एक दिन बिक जाएगा, माटी के मन जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, आम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, आम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे या, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ, 9058747171।
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है. मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह
6478724900 लोकल नंबर 6478724900
वेलकम बैक तमाम सामने जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज. मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ अब इस वक्त शामिल होंगी शाजिया मलिक साहिबा गर्मा गर्म खबरें लेकर और आपके साथ जो है ये सिलसिला हमारा तकरीबन रात 9 बजे तक रहेगा. 6 बजे से लेकर 7 तक आप खबरें सुनेंगे, उसके बाद फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे. दुनिया भर में बदलते हालात G7 पर बात करेंगे, दुनिया में और खत्ते में जिस चीजें अनफोल्ड हो रही हैं उस पर बात करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप साहब G7 छोड़कर चले गए, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था उनका, वहां जाके उन्होंने क्या किया इस पर भी आपको अप टू डेट रखेंगे और अंदर की बात भी आपको बताएंगे. इसके अलावा इसराइल ईरान वॉर में क्या चल रहा है, इस पे क्या आगे वाले वक्त में, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर मुर्सा से सुना कि ईरान को जो है वो पहले भी तनाव छोड़ दिया गया था और अब भी बजायर देखने में यही आ रहा है कि ईरान के साथ ज्यादा जो है वो चीजें सामने नहीं आ रही ममालिक. हालांकि रशिया और चाइना ने बहुत जोर लगाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, सऊदी अरब ने भी बयान दिया, पाकिस्तान ने भी दिया और भी दूसरे ममालिक ने दिया, लेकिन जिस तरीके से अमरीका इसराइल के पीछे खड़ा है वैसा कोई खड़ा होकर नहीं आ रहा जहां बाकायदा तौर पर वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है. तो ये सारी मालूमात और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रोग्राम में साजो आवाज. और शाजा जी को आइए खुश आमदीद कहते हैं, काफी देर से जो है वो अपने 5 फॉलोअर्स के साथ बिजी थी तो उन्हें खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WSO हम वैसे ही हैं,
जैसे कहीं थी वैसे आ जाते हैं,
वैसे ही. हाँ
आप डोनाल्ड ट्रंप से सीखें.
हाँ,
पल में कुछ.
हाँ,
और
पल में कुछ
कुछ.
हाँ
ऐसे
वो तुम बड़े एक जबानदान बनते हो. पल में तोला पल में माशा, ये
मैं आपसे सुनना चाह रहा था.
जब भी आता ही नहीं था, भूल गया था ये.
देखा, ये डोनाल्ड ट्रंप है, बस डायरेक्ट इल्जाम लगाओ, डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट
डायरेक्ट,
कोई बीच में एलिगेशन का वर्ड नहीं है, कोई लाइन बिटवीन और बिटवीन द लाइन कुछ नहीं, डायरेक्ट 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 लगो. आपको तो डोनाल्ड ट्रंप को तो जगह आपकी वहां बनती है,
बिल्कुल वहां बनती है. मतलब गलत जगह पे हूं मैं,
मतलब वो तो अच्छा वो उन लोगों में है जो अपने ही लोगों को गलत भी साबित कर रहे हैं.
हाँ, अपने लोगों को गलत.
रिपोर्टर ने उसे पूछा, जी वो जो आपको तुलसी गैबेट साहब है उन्होंने तो कहा था कि वो न्यूक्लियर प्लांट व्लांट इस तरह की चीजें ईरान में
नहीं,
तो की बात
नहीं, अकली वाली उसकी बात मानता.
आई डोंट नो व्हाट शी सेड. चलो
अपने लोगों को भी नहीं।
क्या बनेगा इनका दो दो वो लगा के आए हुए थे मतलब लोगों ने तो मैं तो आई वॉज वेरी शॉक।
तो लोग बहुत बिफरे हुए थे, वो कहते हैं एक तो हमें कह रहे कि ये जी 51st state बनानी है, ऊपर से ये दो
पैसे भी बढ़ा दिए आपके 61 से डायरेक्ट 71
कर दिए,
और वो भी यूएस है। ये आप जो
ये डॉलर्स हैं, डॉलर नहीं है,
ये डॉलर हैं,
डॉलर्स।
ये 61 से उन्होंने एकदम 71
उन्होंने कहा ना हमारे डोम का हिस्सा बनना है तो पैसे ज्यादा।
क्या बनेगा मुझे बताइए तो दुनिया
जो ये चार साल तो ये जो कड़वी गोली है ये बाप
नहीं, चार साल मुझे लगता है इससे पहले
कयामत ही आ जाएगी।
कयामत नहीं, कुछ मैं पाकिस्तान के भी अच्छे बड़े जर्नलिस्ट का वो सुन रहा था और वो ये बात कर रहे थे कि अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं और इसको ईरान सरेंडर यानी आता नहीं है वापस, इसको अनफोल्ड चीजें नहीं होती ज्यादा, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नजर आ रही है सामने। क्योंकि बजाहिर जो कहा जा रहा है कि ईरान जो है प्रॉक्सी है चाइना और रशिया की, वहां कहा जाता है जी जो इसराइल की प्रॉक्सी, इसराइल जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी है, जाहिर है उन्होंने
नहीं ईरान के लिए प्रॉक्सी का वर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें
यूज करते हैं, मतलब मैं इंटरनेशनल एक बात कर रहा हूँ उसकी,
क्यों कहते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट करते हैं,
बहुत से जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी ईरान जो है
हमेशा से ईरान वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसकी अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी है और उसने वही किया है जो उसे अभी ये रिसेंटली अभी बिल्कुल रिसेंटली इन द लास्ट टू ईयर्स जो है इसने बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ा ली है चाइना और रशिया से, क्योंकि उसने देखा है कि रिलायबल दुनिया में पार्टनर्स हैं ये, ना तो मुसलमान ना तो वेस्ट, कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रह जाएगा, कोई खड़ा रह जाएगा तो ये दो कंट्रीज खड़े रह जाएंगे, तो इसलिए उसने जो है दोस्ती बहुत बना ली है उनके साथ और विच इज गुड, और उसी की वजह से फिर जो है वो चाइना ने इनकी सऊदी से भी दोस्ती करवाई थी और बाकी लोगों से, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि सऊदी भी बोल रहा है, सऊदी ऊपर से जरूर बोल
exactly,
रहा है,
वो सामने नहीं आएंगे, वो सामने नहीं आएंगे,
यूएई कतर एंड सऊदी दिल दिल में वो खुश हैं कि इसकी बैंड बज रही है, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। तो ये किसी को अगर बात बुरी लगती है बेशक बिल्कुल
लेकिन लग सकती है। अभी जैसे बात हो रही थी डॉक्टर मुस्तफा भी हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, आरफ मुजफ्फर साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं जो 30-40 साल या इससे ज्यादा का अरसा हो गया है जो ये मुल्लाइज्म वहां गवर्नमेंट रन कर रहे हैं और इस चीज को जो है वो जमहूरियत को आगे नहीं आने दे रहे, खासकर वहां का जो यंग नौजवान है वो बेसिकली उनको इस्लाम से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो ये इस्लाम के रन करने वाले जो मौलवी वहां बैठे हुए जो पिछले कई सालों से मतलब कह लेंगे 30-40 साल हो गए तकरीबन से ज्यादा 70s से बाद से ले लें, तो वो उनसे नाराज हैं, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन लीक भी हो रही है आप देखेंगे बहुत ही प्रिसाइजली अटैक इसराइल कर रहा है कि वहां लोकल्स बहुत बेजार आए हुए हैं इन लोगों से कि आप इनको जो है वो खुदारा इनको यहां से हटाएं ताकि एक जमहूरियत हो जहां हम सांस ले सकें, ये मतलब बकौल जो लोगों की वहां की राय हम बात कर रहे हैं, नथिंग कि आप इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन एक आम परसेप्शन ये ईरान में उठ रहा है कि हम इससे अपनी जो है वो जान छुड़ाएं, ये जो एक इस्लामिक मुल्लाइज्म यानी जो इनकलाब आया जब से उसको अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अभी डॉक्टर मुस्तफा कहते हैं कि ईरान में ये भी अब हाल हो गया कि आप घर में जैसे शादी है तो वहां गाने वगैरह नहीं बजा सकते, वहां दूल्हा को पकड़ के ले जाते हैं, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो एक आम आदमी 30-40 साल से अगर वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बॉयल हो जाएगा, स्पिल तो होगा, जब बॉयल हो जाएगा तो फिर वो स्पिल भी होगा।
आजाद थे ना ईरानी, तो बहुत ही आजाद,
बिल्कुल उस वक्त ईरान इवन अफगानिस्तान की भी जब बात करें,
अफगानिस्तान की तो ये तो बिल्कुल ये तो लगता था वेस्ट का कोई हिस्सा है, ये तो मुस्लिम कंट्रीज लगती,
ठीक है हम ये नहीं चाहते कि वो भी बिल्कुल एकदम लिबरल हो जाए,
नहीं नहीं मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल वेस्ट को फॉलो करते हैं और अचानक से फिर उनको बोला जी ये बिल्कुल ही आप जो मौलवी बन जाओ और ये अपने वो जो है वो अबाये पहन लो,
तो अब ये भी
अगर म्याना रवि से चलते ना थोड़ा
इसी वजह से फिर ईरान जो आप देखें बहुत ही तनहाई का शिकार रहा, उन्होंने कहीं दोस्ती यारी आपने कहा अब कुछ सालों से हमने देखा कि ईरान बाहर निकला और ईरान ने दोस्ती यारी की, वरना अदरवाइज तो ईरान कहते ना एक बॉक्स के अंदर ईरान रह रहा था,
जो नए प्राइम मिनिस्टर पिज़क्शियां आ गए ना इन्होंने कहा था हम सबके साथ दोस्ती,
वरना अब इससे पहले तो देख लें कि पिछले 30 सालों से देख रहे हैं 25 सालों से ईरान ने ऐसा कोई अपनी सिफारती कोई ताल्लुकात जो है दुनिया भर से नहीं बनाया,
सरकार के साथ भी तो लगाया हुआ था ना सिफारती तालुकात, वो कैसे बनाता सैंक्शन पे,
नहीं अभी भी तो सैंक्शन है,
सैंक्शन हाँ सैंक्शन, लेकिन वो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ ना, मैं उस वक्त के सैंक्शन में रॉकेट जब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, अच्छा तो सैंक्शन थे, सैंक्शन की वजह से हर कंट्री डरता था कि भाई इसके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है उस वक्त जो सैंक्शन लगे थे जो जिस वक्त 80s में जब ये सारे ये आया था इस्लामिक रेवोल्यूशन, उस वक्त द बिगेस्ट चेंज वॉज कि जिस वक्त वेस्ट ने बोला कि हम सैंक्शन लगाएंगे, दो जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज यूरोप की थी एक फ्रांस और एक जर्मनी, उन्होंने कहा हम आपके सैंक्शन का हिस्सा नहीं है, एज अ रिजल्ट जो फ्रांस की टोटल कंपनी थी और जो जर्मनी की श्लम्बर्जर थी वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ बिजनेस कर रही थी, कॉन्स्टेंटली बिजनेस कर रही थी। यानी उस जमाने में तो रशिया और चाइना भी इतने डरे हुए थे कि वो कहते थे ओ नो नो नो, इनके साथ अगर किया तो अमरीका के साथ जो है वो नहीं कर सकेंगे। और वैसे और फिर रशिया तो जो था वो तो चाहता ही था कि हर किसी के साथ वो बना के अपना वो उस एरिया में रखे, क्योंकि वैसे भी अफगान वॉर चल रही थी। तो वो उस वक्त डिफरेंस, इस वक्त क्या हो गया है कि वो जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो भी अब इसका साथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट के साथ वो लोग भी मिल गए हैं। सिर्फ एक मैक्रों जो है वो कहता है कि भाई इतना लड़ाई भी ना करो, इतना भी ना करो, लेकिन ये जो आगे हैं मर्ज साहब आगे हैं, इन्होंने तो मर्ज जो है हाँ जर्मनी में, जर्मनी में
इवन यूके के भी हैं
हाँ कार्स्टॉर्मर जो हैं, तो वो भी इस तरह थोड़ा सा एहतियात से बोलते हैं। मर्ज साहब ने तो बिल्कुल ही मर्ज फैला दिया है सारी जगह के ऊपर अपनी बातों से, तो वो तो मर्ज जो है वो फैलता ही चला जा रहा है ना। अब वो तो वो ये तो वो तो यही कह रहे हैं कि जी ये मौलवी हैं इनको हटाओ, बिल्कुल ठीक है ये है वो है। तो असल में बात तो जो पहले एंजेला मर्कल थी ना वो भी जरा थोड़ा एहतियात से बात करते थे लोग बाहतियात, ये तो बिल्कुल मर्ज साहब जो है ना वही, जैसे मैंने कहा ये तो ये मर्ज ही फैलाते जा रहे हैं ना कि हाँ ये मौलवी है इनको खत्म करो ये है वो है। तो इसराइल तो दैट्स वाई उस वक्त के जो सैंक्शन थे उसका ये, इसीलिए ईरान इतना अरसा खड़े भी रह गया क्योंकि उसकी एक ऑयल इकोनॉमी थी और उसने इनके साथ बिजनेसेस भी किए और वो चलता रहा। और फिर सबसे बड़ा उसको सहारा इंडिया से भी मिला। खैर इस वक्त इंडिया उनके साथ के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा है, लेकिन उस वक्त इंडिया भी उनके साथ बहुत ज्यादा,
क्योंकि इंडिया भी बहुत पार्टनरशिप इंडिया ने इनके साथ रखी,
बहुत ज्यादा उनके साथ
बहुत एक्सेस दिया ईरान ने जो कि इनको नुकसान हुआ,
अब इसको नुकसान हो रहा है,
बहुत एक्सेस था इंडिया के पास वहां चाहे उनकी पोर्ट्स हों या हवाई अड्डे हों,
तो अब उनको नुकसान इस वक्त हो रहा है। नहीं उसके हवाई अड्डे और वो उसकी वजह नहीं है, बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस फिर इधर आके बहुत सारी चीजों के लिए आ गए कि जी हम नौकरियों के लिए आ रहे हैं, हम
बिजनेस के लिए आ रहे हैं,
हाँ, हम कुछ और चीजों के लिए आ रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट उसमें बहुत सारे वो लोग थे जिनको मोसाद ने फिर खरीद भी लिया और फिर इनको
या वो खुद एजेंट थे,
हाँ एजेंट्स थे, एजेंट्स ही थे वो
रॉक एजेंट्स,
रॉक एजेंट्स ही थे। तो उसका बहुत नुकसान फिर ईरान को हुआ। तो असल में बात यह, तो उस वक्त के सैंक्शंस और इस वक्त के सैंक्शंस में दैट इज द डिफरेंस। उस वक्त कुछ तो खड़े थे लोग इनके साथ, अब तो कोई भी खड़ा नहीं रह गया,
लेकिन अब खड़ा ना रह गया। जैसे अब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपना सोशल पे, अपना ट्रूथ सोशल पे ट्वीट डाल दिया कि जी आप सरेंडर करें, और यहां तक कह दिया कि हमें मालूम है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है वो कहां पर हैं, हम उन्हें इजीली टारगेट कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टारगेट जो है वो नहीं करेंगे
फॉर नाउ,
मतलब अभी नहीं वारा, लेकिन क्योंकि लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो इसराइल बहुत बदजेद है इस चीज पर कि हम अगर उन्हें भी टारगेट करना पड़ गया तो हम उन्हें टारगेट जो है
वो सुन ही नहीं रहा ना,
वो सुन ही नहीं रहा
ट्रंप साहब की बात,
तो वो ट्रंप की बात नहीं सुन रहे। लेकिन अभी बात ये हो रही थी कि इसराइल ट्रंप की बगैर यानी अमरीका की मदद के बगैर जो कहते हैं ना कि इन्हें बिल्कुल ईरान को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकेगा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि जो इन्होंने बंकर्स अपनी बनाए हुए ईरान ने जो अपना अंडरग्राउंड किया है, इसराइल के पास वो अभी टेक्नोलॉजी बॉम्ब की वो नहीं है। वो ऊपर से तो ठीक है मार रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यूएस दे रहा है, लेकिन वो जो बॉम्ब है अंडरग्राउंड को जो बंकर्स को उड़ा देने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है।
वो इस्फहान जो है, इस्फहान के अंदर जो उनके सारे वो जो न्यूक्लियर वो है उनको नहीं खत्म करते,
तो ये वही बॉम्ब है जिसको हम कहते हैं ना कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जो इन्होंने अफगानिस्तान में भी गिराया था वाहिद, वो एक वो बॉम्ब है जो गिराने के बाद बंकर्स को भी अंडरग्राउंड वो उड़ाने की काबिलियत रखता है, और उसे उड़ाने के लिए भी आई थिंक B-52 तैयारा चाहिए होता है, उससे इसके अलावा वो किसी और प्लेन में जा भी नहीं सकता। तो अगेन बजाय तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आपको कह रहे हैं, आपने देखें
B-52 का की बात कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं
उन्होंने अपने जो है फ्लीट जो है ओशंस में उसे मूव करा दिया है। तो बजाहिर मुझे लग रहा है कि अगर ये जरा सा भी एक्सक्लेट होती हैं चीजें तो बात वहां जहां से मैंने शुरू की कि ये क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी शिफ्ट हो जाए, खुदा ना खास्ता ईरान जो है वो किसी अपने अमेरिकन बेड़े के ऊपर या किसी अमेरिकन बेस के ऊपर कोई मिसाइल चला देता है, वहां से अमेरिकन उसको रिस्पांस देते हैं, तो क्या रशिया और चाइना भी इसमें कूद जाएंगे कि क्या होने वाला है? ये मुझे जो है आने वाले
सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा
क्यों और फिर
अमरीका की किसी बेस पे हमला करेगा।
हाँ ये अब हमने देखना होगा,
बिल्कुल क्लियरली ललकार लेगा उसको,
अब देखें क्या होने वाला है।
अमरीका पूरा साथ दे रहा है ना इसराइल का,
वो तो 100% साथ दे रहा है, और उन्होंने धमकी भी लगा दी थी अगर आपने हमारे किसी फौजी अड्डे को किया तो फिर हम इसमें, अभी तो कहते हैं ना कि हम शामिल नहीं है, अब हालांकि शामिल तो ऑलरेडी है लेकिन वो कहते हैं कि फिर हम बाकायदा ऑफिशियली तौर पर हम जो है वो शामिल हो जाएंगे,
लेकिन अमेरिका में इसमें बहुत ज्यादा आवाजें हो रही है। कल भी मैं देख रही थी अमेरिका के अंदर बेइंतहा लोग जो हैं इस चीज के खिलाफ, अमेरिकन जो हैं यानी गोरा अमेरिकन जो है जो कि कभी ट्रंप साहब के साथ खड़ा होता है, वो गोरा अमेरिकन अब कह रहा है ये हमारी वॉर नहीं है, کیوں امریکا اس کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے, کیوں تم کو اسرائیل جو ہے ڈریگ کر رہا ہے, کیوں تم لوگ بیوقوف بن رہے ہو, کیوں تم نے اتنے عرصہ جو مڈل ایسٹ میں, پہلے یہ عراق میں اور اس میں لیبیا میں اور یہ وارز لڑی ہیں, ویتنام میں لڑی ہیں, افغانستان میں لڑی ہیں, کیوں تم لوگ اب پھر سے اس کے اندر انٹر ہونے لگے ہو؟
آپ خبریں سنائیں, اس کے بعد پھر 7 بجے کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے.
بہت ساری خبریں آپ کو
مل جائیں گے,
آپ کو جواب
ان شاء اللہ. لیکن ایک سوال میں کہہ دوں, ہم جو میں بات کر رہا تھا, معذرت آپ کو روک رہا ہوں, شاید جی محرم آنے والا اور ایران عراق اور محرم آپ کو معلوم ہے ہم سب ان چیزوں کو,
تو
مجھے نہیں, مجھے جو فکر اس بات کی ہو گئی کیونکہ چند ہی مطلب لیس دین ٹو ویکس
رہ گئے,
وہاں سب جائیں گے اور ایک سلسلہ ہے پورا آپ کو معلوم ہے, تو وہ پھر مجھے کافی تکلیف دے ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ محرم شروع ہو جائیں گے اور خدا نہ خاصا یہ جنگ آگے بڑھتی ہے,
لیکن سارے کنٹریز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوائڈ گوئنگ ٹو ایران, لیکن اگر پھر بھی کوئی جانا چاہتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی ہے.
ہاں تو وہ پھر کافی ٹینشن کے باعث ہو جائے گی. چلیں جی خبریں سنائیے,
خبریں آپ کو سناتے ہیں اور بہت ساری آپ کو جو ابھی عامر سوال کر رہا تھا ان سارے بہت سارے سوالوں کے آپ کو جواب ابھی مل جائیں گے اس کے بعد. اچھا جناب, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجہ بادشاہ. راجہ بادشاہ جی کے پاس آپ جائیں, بہت اچھے آپ کو, اگر آپ کے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے تو اس کی آپ کو سروسز دیتے ہیں, آل اسٹیٹ کے ساتھ ہیں. ان کا نمبر ہے 6472903773. اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو فیصل چٹھا صاحب کے پاس جائیں, ان کے دو ریسٹورانٹس ہیں ولیج ٹیسٹ کے. ولیج ٹیسٹ ایک مسساگا میں ہے اور ایک اوکول میں ہے, تو آپ جب ضروری نہیں ہے کہ آپ ویکینڈ کا ہی ویٹ کر لو, کبھی بیچ میں سے بھی آپ کو جانا ہے وہاں پہ, کوئی گھر میں مہمان آگے ہیں اور کچھ آپ کو یہ آپ کے ڈائن آؤٹ بھی کرنا ہے تو بھی آپ فیصل چٹھا صاحب کو فون کر سکتے ہیں 6477744888. اور اگر آپ کے دانت خراب ہو گیا تو ڈاکٹر نازیہ رحمان کے پاس جائیں, ان کے بھی اب 3 کلینکس ہیں اور ہر طرح کی جو ٹوتھ کی آپ کو سروسز ہیں ڈاکٹر نازیہ رحمان دیتی ہیں. تو ڈاکٹر نازیہ رحمان جو ہیں وہ ان کے دو جو کلینکس ہیں وہ برامپٹن میں ہیں, ایک مسز ساگا میں ہے, تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 9058721100. ٹرک آپ کا خراب ہو گیا ہے یا خراب ہونے کے پاس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹرک ہمارا ٹھیک رہے تو QTL کوئک ٹرک لیوب کے پاس آپ جائیں, خاص طور پہ جو ان کا نیپنی کا لوکیشن ہے وہاں پہ آپ ضرور جاؤ, تو بہت زبردست ان کے پاس آئلز ہے, بہت اچھے ان کے پاس مکینکس ہیں QTL کے پاس, تو وہ آپ کو بہت اچھی جو ہیں وہ سروسز دے سکتے ہیں. ان کا نمبر ہے 1519622060. آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ آ گیا ہے جیسے کہ شادی بیاہ عقیقہ کوئی گریجویشن آ گئی ہے اور آپ کو گولڈ کا کچھ دینا ہے تو پائل جیولرز کے پاس آپ جائے, وہاں پہ اسلم بھائی ہوتے ہیں اور اسلم بھائی جو ہے آپ کو بہت اچھی جو ہے سروس دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس انڈیا پاکستان سنگاپور کی جو ہے وہ دبئی سے بھی لے کر آئے ہیں بہت ساری جیولری. ان کا نمبر ہے 9057907879. اگر آپ کو الیکٹرانکس بلک میں چاہیے اور مارکیٹ سے کم ریٹ پہ چاہیے تو آپ سلطان بھائی کے پاس جاؤ, برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں سلطان بھائی, 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہے. تو اگر آپ کو سستے الیکٹرانکس بلک میں چاہیے ہے تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 9054502828. اچھے کپڑے چاہیے تو اسپیئر اینڈ مکے پہ جائیں, اٹالین فیبرک کے کپڑے ہیں بہت اچھے ہیں, مردوں کے ہیں لیکن عورتوں کے نہیں ہیں, 775 بریٹانیا روڈ ویسٹ پہ ہیں یہ, اور یہ نیا لوکیشن ہے ان کا اور ان کا نمبر ہے 9056703388. تو یہ آپ فالو کریں. اچھا جناب, کرنی صاحب جو ہیں انہوں نے آؤٹ لائن کیا ہے آج کے $4.3 billion یوکرین کی ڈیفنس کے لیے وہ سپینڈ کریں گے. آج ان کی ملاقاتیں جو ہیں یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی ان کے ساتھ ہو رہی تھی آن دا سائڈ لائنز آف G7 سمٹ, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ $2 million جو ہے وہ ڈرونز کے لیے, ایمونیشن اور آرمڈ ویکلز کے لیے ہے, اور کینیڈا فنڈنگ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا جی یہ جو جتنی بھی فنڈنگ ہے کینیڈا کی یہ اب اٹ ول بی کنسیڈرڈ ٹوورڈز نیٹو ڈیفینس اسپینڈنگ ٹارگیٹ. اس میں وہ کہتے ہیں جی 2.3 billion جو ہے ہم ہیلپ کریں گے یوکرین کو بلڈ کرنے کے لیے اس کا انفراسٹرکچر. پرائم منسٹرز آفس جو ہے اس نے کہا جی یہ لون جو ہے اس کے علاوہ کچھ پارٹ لون ہے جو کہ ری پے کیا جائے گا بائی انٹرسٹ چارج on Russian assets frozen in Europe. انہوں نے آج کہا جی کہ نئے سینکشنز جو ہیں ہم رشیا کے شیڈو فلیٹ کے اوپر اور انرجی ریونیوز جو اس کے اوپر لگا رہے ہیں. G7 کے لیڈرز جو ہیں ان کا ایک ورکنگ سیشن جو تھا وہ ہویا تھا اور اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کا جو رشیا کا جو وار ہے یوکرین کے اوپر ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کارنی صاحب نے آج کنڈیم کیا یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ آف رشین اٹیکس ہے یوکرین کے اوپر اس کو. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ہماری اور بھی زیادہ جو ہے امپورٹنس آ جاتی ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ بھی اور میکسیمم پریشر ڈالے رشیا کے اوپر. زیلنسکی صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو میرے ملک میں چل رہی ہے اور ایلائز کا اور خاص طور پہ کینیڈا کا بہت انہوں نے شکریہ ادا کیا. جینیٹک ٹیسٹنگ کمپنی 23 اینڈ می, یہ کمپنی کا نام ہے 23 اینڈ می, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट फेल टू टेक बेसिक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कस्टमर डाटा अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो की थी कनाडा और यूके ने इन मैसिव ग्लोबल डाटा ब्रीच। यूके ने तो इस कंपनी के ऊपर अब 2.31 मिलियन पाउंड यस पाउंड्स नॉट डॉलर्स पाउंड्स का इसको फाइन कर दिया है, लेकिन कनाडा जो है उसके पास इस तरह की पावर नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई फाइन्स कर सकता है या इसको पेनल्टी दे सकता है। कनाडा के प्राइवेसी जो कमिश्नर हैं फिलिप डुफ्रेस ने उन्होंने कहा है कि यूके के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे जॉन एडवर्ड्स के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ओटावा में की और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा चूंकि ये जो ब्रीचेज हैं ये बढ़ती चले जा रही है जिसकी वजह से रैनसम वेयर एंड मैलवेयर अटैक्स होते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनीज जो है प्रॉपर जो है इसके अंदर प्रायोरिटीज अपने लें ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके और इतना वल्नरेबल वो ना रहे। सेप्टेम्बर में इस कंपनी ने अग्री किया था कि 30 मिलियन डॉलर जो है ये देगी इन लॉ सूट सेटलमेंट और उसमें फिर उन्होंने कहा था कि चूंकि हैकर्स ने बहुत सारा लोगों का पर्सनल डाटा जो था वो ले लिया था, तकरीबन 7 मिलियन कस्टमर्स थे उसमें से 320,000 जो थे वो कनेडियंस थे और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डॉट वेब पे बेची थी। तो ये काफी आज की बड़ी खबर है। कनाडा जो है वो जनाब पे करेगा अब 71 बिलियन US डॉलर्स नॉट कनेडियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स अगर वो चाहता है कि गोल्डन डोम जो डिफेंस सिस्टम है उसका ये जो है हिस्सा बने। ट्रंप साहब ने आज रिपोर्टर्स को कहा G7 के ऊपर कि हाँ बिल्कुल कनाडा जो है ये इसका गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है और जो है उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये वही चीज है जैसे कि आपको पता ही है कि इसराइल का डिफेंस डोम मिसल इंटरसेप्टिंग सेशन है सिस्टम है वैसा ही ये भी है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल कर्णी साहब जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं और कर्णी साहब भी बिल्कुल ऑन बोर्ड नजर आते थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले ट्रंप साहब ने कहा था कि कनाडा जो है 61 बिलियन US डॉलर्स देगा इसके लिए और 10 बिलियन जो थे वो लेस थे लेकिन कल इन्होंने जो 10 बिलियन और बढ़ा दिए। इससे पहले जो है यूएस ऑफिशियल्स के साथ जो है कनेडियन डेलीगेशन के जो है क्लोज डोर मीटिंग्स हुए हैं और इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम एक डील जल्दी ही 30 डेज के अंदर यानी कि विद इन अ मंथ जो है हम साइन कर सकते हैं, इसके डिटेल्स सामने नहीं आए हैं। इसके साथ साथ जो है ट्रंप साहब ने कहा है कि जी जो डील 30 डेज के बाद होगी ये जो गोल्डन डोम का जो डील है ये बिल्कुल सेपरेट होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस डील और जो है टैरिफ्स भी जो है अपनी जगह पे रहेंगे जो हमने कनाडा के ऊपर लगाए हुए हैं और ये जो टैरिफ्स खासतौर पे इनके मेटल्स के ऊपर और दूसरे कैनेडियन गुड्स के ऊपर है वो जो कवर्ड नहीं है अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो इन तीनों कंट्रीज यूएस कनाडा और मेक्सिको के बीच में है वो अपनी जगह पे रहेंगे। इसके साथ साथ लेकिन उन्होंने जो यूके के साथ जो डील की है ट्रंप साहब ने वो अमेजिंग डील की है, उन्होंने जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कॉर स्टॉर्मर के साथ जो है बहुत ज्यादा टैरिफ्स जो है वो कम कर दिए हैं, उन्होंने कहा जी कि हम अब देखेंगे कि आपको प्रोटेक्शन मिले आगे फ्यूचर के अंदर भी। ट्रंप साहब ने कहा कि इनके जो एरोस्पेस सेक्टर है यूके का उसके ऊपर कोई भी टैरिफ्स नहीं है, ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी सिर्फ 10% टैरिफ रहेगा डाउन फ्रॉम 25%, इनकी जो स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी 25% अभी हम लगाएंगे और आपको पता ही है कि ग्लोबल स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर इंक्लूडिंग कनाडा उन्होंने 50% टैरिफ्स लगाए हुए हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप ये यूके यानी इंग्लैंड को के साथ ये खासतौर पर क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं आई लाइक देम सिंपल एज दैट, आपको पता ही है कैंडिड है जरा ना ट्रंप साहब तो कहने लगे कि आई लाइक देम तो इसलिए जी मैं ऐसे कर रहा हूं। ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड साहब वो बहुत ज्यादा नाराज नजर आए जजेस से और उनको उन्होंने आज कहा वीक नीड जजेस जो कि हमारा जो बेल सिस्टम है उसको खराब किए बैठे हुए हैं और ये उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस वक्त वन सस्पेक्ट चार्ज इन $50 मिलियन ड्रग बस्ट इन अपील रीजन जो है उसको कस्टडी से जब जो है वो कर दिया गया निकाल दिया गया जो है ये जो कस्टडी में थे पुलिस की उनको छोड़ दिया गया उसके अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं और बिल्कुल हमको एक मीनिंगफुल बेल रिफॉर्म लाने का जरूरत है और वो कहते हैं जी कि ये इससे पहले भी कल भी जो हमने आपको ये खबर सुनाई थी कि 18 सस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ही वायलेंट एक्सटॉर्शन के अंदर जो है पकड़े थे पील पुलिस ने, तो वो कह रहे हैं जी कि ये लोगों को पुलिस तो पकड़ पकड़ के ला रही है और इनको जो है वो इनके खिलाफ क्रिमिनल जो चार्जेस है वो भी लगाए जाते हैं और फिर उनको जो है बेल मिल जाती है, तो उन्होंने कहा कि हमको चेंजेस लाने का जरूरत है क्रिमिनल कोड के अंदर भी और ये जो बेल के रिफॉर्म्स है इनके अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि ये डिली डैलिंग करना आप छोड़ दें और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा जी कि मैं बिल्कुल आपके साथ जो है मैं मैं पूरी तरह से इसके ऊपर काम करूंगा, क्योंकि आपने मुझे अपना वादा भी दिया था, आपने मेरे साथ इसके ऊपर बात भी किया था, तो आपको अब ये करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी कि जो करंट सिचुएशन है बहुत ही डिस्गस्टिंग है। इसके अलावा जो वॉन का एक रेजिडेंट था जिसने कि कार जेकिंग की अटेम्प्ट को रोका लेकिन पुलिस ने जाहिर है उसको पकड़ लिया है, तो वो कहते हैं जी उसके लिए मैं फंड रेजिंग करूंगा, उसकी फीस मैं दूंगा और बल्कि उसको एक मेडल भी मैं दूंगा। तो पुलिस अगर काम नहीं कर रही है या कोर्ट्स अपना काम नहीं कर रही है तो फिर उसके ऊपर इनको करना पड़ेगा। ट्रंप साहब जो है जी, अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान का एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। इसका जिक्र आज वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के जेडी वैंस, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा जी कि लेकिन अल्टीमेटली तो डिसीजन जो है वो ट्रंप साहब ने खुद ही लेना है और वो खुद ही अपने सारे फैसले वो लेते हैं। वो कहते हैं जी कि वो बिल्कुल ट्रंप साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि यूएस मिलिट्री फोर्स जो है उसको यूज करें अमेरिकन गोल्स को करने के लिए, गेन करने के लिए। उसकी वजह यह है कि ट्रंप साहब ने उससे पहले कहा कि ये जो ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सीज फायर कोई नहीं है, बस ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म होना चाहिए, जो हमने कल जैसे कि कल भी आपको बताया था। तो इसके ऊपर जो है जेडी वैंस जो है वो बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर जाहिर है कि लोगों की ये जो है कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि अपने बेसिस के ऊपर से भी इन्होंने सारे अपने बंदे भी बुलवा लिए हैं, तो हो सकता है कि जो है वो कर रहा हो, अभी ये बात कर रहे हों। इसके ऊपर जो जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्स, जो कि अभी G7 के मीटिंग पे आए हुए थे, उन्होंने भी एट द साइड लाइन्स जो है रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ये जो डर्टी वर्क जो हमारा है वेस्ट का है ये इसराइल कर रहा है, क्योंकि हम सब इंक्लूडिंग इरेनियंस जो हैं इस रजीम के जो हैं वो विक्टिम्स हैं। उन्होंने कहा दिस मुल्ला रजीम ब्रॉड डेथ डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड, और इसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरत है। और हम ईरान को यह भी कहते हैं कि निगोशिएटिंग टेबल पे वापस आओ। उन्होंने कहा जी कि इसराइल की जो आर्मी है वो ये काम नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके पास प्रॉपर आर्म्स नहीं है, ये काम सिर्फ अमेरिका कर सकता है जिसके पास प्रॉपर आर्म्स है। यानी कि ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो दावत दे रहे हैं अमरीका को कि भाई तुम आ जाओ इसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो है इसके लिए जो है ये मुल्ला रजीम को खत्म करने के लिए हम जाहिर इसराइल के साथ खड़े हैं। यूएस मिलिट्री जो है वो अब डिप्लॉय कर रही है एडिशनल फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स इन मिडल ईस्ट, यानी कि अपना इक्विपमेंट वो लाना शुरू हो गए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेगसेथ, उन्होंने आज ट्रंप साहब के साथ जो है वो बातचीत की है और उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए। अब ये ऑप्शंस जो हैं उसके डिटेल्स तो नहीं आए, लेकिन जाहिर अगर कॉमन सेंस किसी में भी है तो वो सोच सकता है कि भाई क्या ऑप्शंस होंगे कि हम अटैक ना करें, हम ये सारा असलाह इसराइल को दें, इसराइल ही अटैक करता रहे, हम अपना पीछे से ये स्टोरी बताए रखें कि जी अमरीका इसका साथ नहीं दे रहा। तो बहुत सारे ऑप्शन जी पीट हेगसेथ साहब ने आज ईरान के सिलसिले में ट्रंप साहब को दिए हैं। और ट्रंप साहब को आज बताया गया कि भई आपकी अपनी नेशनल इंटेलिजेंस जो चीफ है तुलसी गैबर्ट, उसने अभी थोड़े दिन पहले ही मार्च में ही अभी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जब वो आई थी तो उसने कहा था कि ईरान के हमारी अपनी खुद की अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स जो है नहीं बना रहा है, क्योंकि उसका ऑथराइजेशन अली खामनाई जो उनके सुप्रीम लीडर है उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम 2003 में ही सस्पेंड कर दिया था। तो यानी ईरान ने 2003 में ही सस्पेंड कर दिया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। तो उसके ऊपर जैसे कि अभी हम खबरों से पहले ही बात कर रहे थे, तो जब ट्रंप साहब को कहा गया कि भाई आपकी तो अपनी इंटेलिजेंस हेड ऐसा बोल रही है, तो कहते आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, तो उन्होंने ऐसे करके उसको जो है वो कर दिया। अब इसके ऊपर मर्स साहब जो है वो जरा ज्यादा ही मर्ज मैंने जैसे पहले ही कहा फैला रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि अमेरिका को कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम जो है अगर तुमको इसराइल कह रहा है अटैक करने का तो तुमको बिल्कुल ये जो मूल्य हैं इनको खत्म करना है। भाई अपने मुल्क में मौलवी हैं जो मर्जी हैं, आपके मुल्क में जो कुछ चल रहा है मर्ज साहब जर्मनी के मामलात में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो आप कहेंगे जी हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करना, तो आप ईरान के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो भाई? तो आप उनका मुल्क है वो जैसे मर्जी चलाएं, वो उल्टे चलें सीधे चलें, चादर करें ना करें, नंगे फिरें, आपको क्या तकलीफ है, आप अपना मुल्क चलाओ ना। लेकिन जाहिर है वो बाप बनने का तो इन सबको बड़ा शौक होता है ना, तो वैसे भी वो खुश करना चाहते हैं इसराइल को भी और ट्रंप साहब को भी, तो ये बात है। आज लेकिन बहुत बड़ी चेंज आई है जी अमेरिका के अंदर। एक तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग भी आपने देखी होगी बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, और लोग अब जो गोरा अंग्रेज है वहां पे, जो गोरा अमेरिकन है, नॉट रियली द ब्लैक्स और द ब्राउन बट द गोरा अमेरिकन जो है वो भी बहुत ज्यादा नाराज है। डेमोक्रेटिक वर्जीनिया के जो सेनेटर हैं टिम केन, उन्होंने कहा जी कि मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कांग्रेस के अंदर जो रोकेगा ट्रंप साहब को कि ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हूं कि ये जो हॉस्टिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ती चले जा रही हैं इसराइल और ईरान के बीच में और ये एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट फिर शुरू हो जाएगा इसके अंदर। वो कहते हैं जी और ये अमेरिकन इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि एक और मोर्चा जो है खोल दिया जाए और खास तौर पे मिडल ईस्ट में अमेरिका जो है वो शामिल हो जाया जाए। वो कहते हैं जी एटलीस्ट मैं ये बिल लाऊंगा ताकि अपने मुल्क के जो मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म यानी कि औरतें और मर्द हमारे जो फौजी हैं जिनको कि हम इस तरह के हॉर्म्स वे में यानी कि ये बड़े खतरनाक वॉर पे हम जो भेज रहे हैं तो उसके ऊपर एटलीस्ट डिबेट और वोट जरूर जो है कांग्रेस के अंदर होना चाहिए। उन्होंने बिल इन्वोक किया है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ऑफ 1973 जो पास किया गया था ड्यूरिंग वियतनाम वॉर जिसके के अंदर आपको जो यूनिलैटरल जो पावर्स थे प्रेसिडेंट के पास उनको कंस्ट्रेट किया जाता है कि वो कर नहीं सकते हैं कैसे जो है मिलिट्री हॉस्टिलिटीज किसी कंट्री के खिलाफ जो है वो शुरू करें। इसके ऊपर वो ये बिल क्यों आया ये बिल इस वक्त ये लेकर आए हैं टिम केन साहब जिस वक्त ट्रंप साहब ने कहा कि हमें पता है एग्जैक्टली कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाए कहां पे छुपे हुए हैं इस वक्त तक तो वो बिल्कुल सेफ है और हम उनको अभी मारना नहीं चाहते हैं लेकिन इनको ये जो मिसल्स मार रहे हैं सिविलियंस के ऊपर और अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर तो इनको ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा हमारी पेशेंस जो है वो खत्म होते जा रही है। और ट्रूथ सोशल पे कैपिटल लेटर्स में इन्होंने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर बस इतना ही ये नहीं कहा कि ईरान मस्ट डू अनकंडीशनल सरेंडर और मस्ट गो फॉर उन्होंने सिर्फ इतना लिखा अनकंडीशनल सरेंडर सिर्फ इतना ही लिखा है और उन्होंने कहा कि ईरान के जो फिजा है उसके ऊपर हम बिल्कुल कब्जा किए हुए हैं और हमें पता है हमारा इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है और हमारा इक्विपमेंट जो है यूएसए का दैट इज द बेस्ट। अब जब ये रेटरिक आया तो इसके ऊपर जो है और मर्स साहब के जो रेटरिक आ रहे थे जर्मनी के तो इसके ऊपर जो मैक्रों साहब हैं वो भी आए हुए थे यहां पे G7 के ऊपर जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा ये जो आप रेजीम चेंज ईरान में लाने का कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा क्योटिक होगा अगर अमरीका इसका हल चाहता है तो उसको सबको टेबल पे लाना पड़ेगा यानी कि आपको डिप्लोमेसी आपको निगोसिएशन करने पड़ेंगे। तो अब ये जो है काफी चीजें जो हैं खिचड़ी इनकी पकती जा रही है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इसराइल कैट्स उसने आज बहुत ज्यादा वार्न किया है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाए को कि तुम्हारा अंजाम वही होगा जो इराकी प्रेसिडेंट सदाम हुसैन का हुआ था और उन्होंने आज मुलाकातें कर रहे थे वो इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ और उन्होंने कहा जी कि ये ईरानियन डिक्टेटर है और हम उस वक्त तक इसके खिलाफ वॉर रखेंगे जिस वक्त तक हमारा एम पूरा नहीं होगा और ये जो है मिसल्स मार रहा है हमारे इसराइली सिविलियंस के ऊपर और जिस तरह से हमने सदाम को खत्म किया था इसको भी हम करेंगे। सदाम को आपको पता ही है कि उसकी यूएस ने उसकी गवर्नमेंट टॉपल की थी विद इन्वेजन इन 2003 फिर उसको फिर ढूंढा और उसको एग्जीक्यूट इन्होंने किया था। सदाम ने जो थे वो मिसल्स फायर किए थे इसराइल के ऊपर ड्यूरिंग 1991 गल्फ वॉर और इसराइल जो है उसने आज भी बहुत सारे जो हैं वो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसल के जो प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर टारगेट किया ईरान ने उसका जवाब दिया है कि हमने भी इनके जहां पे वो होते हैं सुपरसोनिक मिसल्स उनके ऊपर हमने अटैक्स किए उसके पास का जो एरिया उसमें किए हैं और लेकिन इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का जो अंडरग्राउंड फर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर ये अटैक जो है कुछ फायदा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी जो है इनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इसराइल ने कहा जी कि हम भी प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि हम एक न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं चाहते क्योंकि जाहिर है अगर न्यूक्लियर कोई फैसिलिटी हिट हुई और वो जो रेडिएशन है वो फिर सारे इलाके में फैलेगी फिर ये कोई यूएई कतर बहरेन यूएई ये वो फ्लांडिंग इवन पाकिस्तान इंडिया कोई बचे नहीं रह जाएगा इवन चाइना कोई भी बचा नहीं रह जाएगा फिर। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए ये न्यूक्लियर जो डिजास्टर इसको बताना चाहते हैं लेकिन आज उन्होंने फिर से क्लेम किया इसराइली मिलिट्री ने कि हमने सीनियर ईरानी कमांडर अली शामदानी और शादमानी और जो है जिन्होंने के जो थी कमांड ली थी इनके जो प्रेडिसर्स थे गुलाम अली राशिद उनसे उनको हमने जो है इजरायली रेड के अंदर मारा है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब उन्होंने आज बात की है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इनके साथ बात कर रहे हैं। बहरहाल जी उन्होंने उनके साथ फोन पे बात की उन्होंने कहा कि इसराइल जो कंटिन्यू कर रहा है ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये रीजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे और ये जो वायलेंस बहुत ज्यादा इसराइल जो है वो फैलाता चला जा रहा है इसकी वजह से रीजनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत रिस्क पे आ गई है और हम اس علاقے میں ایک اور وار برداشت نہیں کر سکتے، یعنی کہ آلریڈی غزہ کے اوپر چل رہی ہے تو اب یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں ان کو ان کے تھرو جو ہے ایران کے ساتھ بات کرنا پڑے گا اور یہ وار کو روکنا پڑے گا، ورنہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلیں آ جائیں گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس غزہ میں اور ویسٹ بینک میں چل رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ہماری نظر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج اردوغان صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اور بڑی بات کیا خیر نظر ہی آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل جو ہے اب آکیوپائی کرنے والا ہے ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کو بھی، تو یہ دے مائٹ کم انڈر دیئر کنٹرول. تو مائٹ کیا ہے وہ سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ وہ ہے. ایک اچھی خبر بھی سنا دینی ہے، دنیا کی آج جو ٹاپ ایئر لائنز ہیں ان کے لیے آج 2025 ورلڈ ایئر لائن اوارڈز جو ہے ان کا آج اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے پیرس ایئر شو جو چل رہا ہے وہاں پہ. اور نائنتھ ایئر ان اے رو قطر ایئر ویز جو ہے اس کو دنیا کی بیسٹ ایئر لائن کا اوارڈ آج دیا گیا ہے. نمبر دو پہ سنگاپور ہے، نمبر تھری پہ کیتھے پیسیفک، پھر نمبر فور پہ ایمریٹس ایئر لائنز، نمبر فائیو پہ اینا ال نپون ایئر ویز، سکس ٹرکش ایئر لائنز، سیونتھ کورین ایئر، ایٹ پہ ایئر فرانس، نائنتھ پہ جاپان ایئر لائنز، ٹینتھ پہ ہنین ایئر ویز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو اتحاد کا اس میں نام نہیں لیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایئر فرانس سے کافی اچھی ہے اتحاد، اور ایون کورین ایئر جو ہے اس سے بھی کافی اچھی ہے. لیکن بہرحال جی اب سارے تھے انہوں نے اوارڈ جڑے نے یو اے نیو سی نہ دینے تھے تا کر کے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دنیا کی بیسٹ ایئر لائنز ہے. ہم ادھر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پاکستان انڈیا سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی خبریں آپ کے ساتھ کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM ینگ ٹاؤن ٹورانٹو.
وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس.
پراپرٹیز ریزیڈینشل اور کمرشل، بائنگ اور سیلنگ،
انویسٹمنٹ پراپرٹیز یا پھر کنڈومینیمز ان دی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو،
وی ول ارینج یور مورگیج،
آلسو ا ہاؤس وارمنگ گفٹ.
سروس از آر پرائیورٹی،
کسٹمر سروس از آر پرائڈ. پلیز ایکسپیرینس دی ڈفرنس. آپ گھر خریدنا یا گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، گھر کی ایویلویشن کے لیے ایک دفعہ کال کیجیے عارفہ مظفر 6478968645 8 9 8 6 2 4 5.
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels, one time payments, long term peace of mind, just $216 for 2-year subscription and 3 4K IPTV box, just $360 for 5-year subscription and 3 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
Badala Super Market, Badala Super Market, halal meat te sabziyan naal le phal vi taza milde, itthe machli ande dudh dahi te saste chawal milde.
واحد سے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ سے انگلٹن دا سنگم فون 416-264-3111
اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین جہاں آپ کو ملیں گے مزیدار کھانے جیسے کہ لاہوری گوٹ کڑاہی شنواری گوٹ کڑاہی نہاری حلیم پائے بریانی سیخ کباب چکن تکہ شورما پیزا اور مزیدار لاہوری چھولے پالک پنیر اور بہت سی ویجیٹیرین آپشنز اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین وہی دیسی انداز اور وہی دیسی ذائقہ 1310 دندا اسٹریٹ ایسٹ مسیساگا یونٹ 3 آرڈر ناؤ کال 416-526-6800
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ شازیہ صاحبہ شامل ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب. اس سے پہلے کچھ اسپانسرز کے پیغامات دوں آپ کو. بٹالہ سپر مارکیٹ ابھی آپ نے ایڈ بھی سنا، یہ اپنی 22nd اینیورسری سیلز جو ہے وہ اس ویکینڈ کو کر رہے ہیں، یعنی June 20 سے لے کے June 21. جی جناب بالکل، آپ نے 3 دن کی یہ سیل ہے، 22 تک، سوری معذرت چاہتا ہوں، June 20 سے لے کے June 22 تک یہ 3 دن کی यहां पर जो है वो बहुत ही जबरदस्त सेल लग रही है बटाला सुपर मार्केट पे। ये 200 मार्कम रोड स्कारब्रो में है और यहां पर आपको जो है हलाल मीट भी बहुत ही जबरदस्त प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरत की तमाम ही चीजें और ग्रोसरी की तमाम ही चीजें आपको इन तीन दिनों में, यानी आपको 20, 21 और 22, यहां इन तारीख को आपने नोट कर लेना, 20, 21 और 22 तारीख को आपने पहुंचना है ग्रोसरी के लिए। कहां पर? बटाला सुपर मार्केट, ये 200 मार्कम रोड स्कारब्रो में है और ये तकरीबन ये कह लें कि दोपहर बजे से लेके कितने शाम 6-7 बजे तक ये तमाम सिलसिला चलता रहेगा। तो बेस्ट प्राइस इन द जीटीए जनाब, तो आपने जाना है बटाला सुपर मार्केट। ये इनकी 22nd एनिवर्सरी डील है, तो आप अगर आसपास हैं ईस्ट एंड पे जो लोग हैं, वेस्ट वाले भी जा सकते हैं जनाब, ड्राइव करने में क्या हर्ज है, ड्राइव करके जाइए और बटाला सुपर मार्केट में इस डिस्काउंटेड ग्रोसरी के तीन दिन मजे कीजिए, 20, 21 और 22। अगेन एड्रेस 200 यानी 200 मार्कम रोड स्कारब्रो। इसके अलावा जनाब आईपीटीवी की बात कर रहे हैं, फास्ट वे आईपीटीवी, अगर आपने अपने घरों में आईपीटीवी यानी ई आवाज टीवी भी देखना है तो आईपीटीवी आपको चाहिए होगा, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं आईपीटीवी के लिए, फास्ट वे आईपीटीवी, ये आपको डील देते हैं। अगर आपने 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी है तो $216 आपको पे करना है और इसमें आपको 4K आईपीटीवी बॉक्स फ्री मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने 5 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको $360 पे करने होंगे और आपको फ्री 4K आईपीटीवी बॉक्स मिलेगा। आपने कॉल करना है 1-866-692-4788 और नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा में अगर आप ये घर पर भी मंगवाना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ डिलीवरी मिलेगी फास्ट वे आईपीटीवी की। जी शाजा जी।
हाँ जी, पाकिस्तान जो है उसने अपना जो डिप्लोमेटिक जो स्टाफ में जो फैमिलीज हैं और नॉन नेसेसरी जो एम्बेसी स्टाफ है ईरान में उसको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि हम इनको ये जो रीलोकेशन कर रहे हैं ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान में और उसके जो काउंसलर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अपने जो है वो ऑपरेट करते रहेंगे मिशन को नॉर्मल तरीके से। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी स्टेप्स ले रही है बहुत सारे पाकिस्तानियों को वापस बुलाने के लिए, खासतौर पे जो बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे ईरान में पढ़ने के लिए गए हुए हैं और ताफ्तान बॉर्डर से 714 जो लोग हैं वो बसेस के थ्रू आए हैं और 3 बसेस के अंदर 154 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी पहुंच गए हैं। इन सबको मूव किया जा रहा है पाकिस्तान हाउस के अंदर फॉर कंप्लीटिंग देयर इमिग्रेशन प्रोसेसेस। और 2 दिन पहले बलूच गवर्नमेंट जो थी उसने कहा था कि हम जी जो हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इन पंजगूर गवादर एंड कच्छ के जो एरिया हैं वो हम बिल्कुल शट डाउन कर रहे हैं और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी उसने एडवाइस किया है अभी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग हमारे कैनेडा जो है उसने भी एडवाइस किया है बहुत सारे लोगों को कि वो बिल्कुल अब ईरान में ट्रैवल ना करें। इसी तरह से इसराइल के लिए भी आई है, जो लोग इसराइल जा सकते हैं कि इसराइल में भी अब आप ट्रैवल ना करें। और पाकिस्तान के अंदर जो चगाई जो है उसका डिस्ट्रिक्ट जो है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच वो खुला रहेगा, ऑपरेशन रहेगा और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है वो चलती रहेगी और यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट लोग भी अगर जाना चाहेंगे ट्रेड के सिलसिले में तो वो जा सकेंगे। पाकिस्तान और यूएसए ने एग्री किया है जी कि वो बातचीत जो है वो जारी रखेंगे और एक बहुत बड़ी ट्रेड डील जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। इसके डिटेल आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने दिया है और उन्होंने कहा जी कि मेरा वर्चुअल मीटिंग मेरी हुई है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के साथ, जिसके के अंदर हमने कहा है कि हमारे ये जो टैरिफ्स है इसके ऊपर बात हुई है और जो है ट्रेड टॉक्स को आगे लेके जाना है और इसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कोऑपरेशन होंगे। यह उस वक्त हो रहा है जिस वक्त के ट्रंप साहब ने कहा था कि अगर तुम लोग जो है सीज फायर करोगे इंडिया और पाकिस्तान तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत बड़े ट्रेड डील्स करूंगा, तो ये उसी का जो है नेक्स्ट स्टेप है। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये बायोलेट्रल रिलेशन को हम बढ़ाना चाहते हैं और बहुत ही मोहम्मद औरंगजेब साहब ने आज इस्लामाबाद में जर्नलिस्टों को कहा कि लुटनिक साहब के साथ लास्ट नाइट मेरी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो है वो बातचीत हुई है। यूएस ने अनाउंस किया थे कि बहुत सारे रेसिप्रोकल हम टैरिफ्स लगाएंगे, अप्रैल में ये कहा था पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का 3 बिलियन ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ इसलिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये विच अमाउंट्स टू 29% ऑफ यू नो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, तो फिर उन्होंने कहा जी कि हम इसको सस्पेंड करते हैं 90 डेज के लिए ताकि जो है टॉक्स किए जा सके। मोहम्मद औरंगजेब और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के जो है एम्बेसडर जेमिसन ग्रीर उन्होंने जो है ये सारी की सारी टॉक्स जो है ये आगे लेकर वो चले थे और उसके बाद उन्होंने कहा था मई में कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी आपको यूएस को बहुत सारे गुडीज देने को तैयार है। एक तो ये कि जीरो टैरिफ्स हम आपके अब गुड्स के ऊपर लगाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूएस फर्म्स जो हैं वो अगर आके यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो माइनिंग सेक्टर है। आपको पता ही है कि अमेरिका को अब बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए है, तो पाकिस्तान ने कहा था कि आप बलूचिस्तान के एरिए में आके माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी हम आपसे अमेरिका से इम्पोर्ट्स अपने बढ़ाएंगे क्योंकि हमको कॉटन और एडिबल ऑयल्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो हम वो सारा का सारा जो है अब अमेरिका से लेंगे। तो इस तरह की बातचीत जो है बहुत ही जबरदस्त, अगर ये डील हो जाए तो पाकिस्तान के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। बलूच गवर्नमेंट ने आज जो है वो सरप्लस प्लस अपना सरप्लस बजट जो है वो पेश किया है, विच इज वर्थ जो है 1028 बिलियन फॉर फिस्कल 25-26। इसमें वो कहते हैं जी हम फोकस करेंगे बहुत हैविली ऑन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। डेवलपमेंट जो है वो रूरल एरियाज के अंदर करके हम लाएंगे। प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर मीर शोएब नौशरवानी जो है वो कहते हैं बजट की स्पीच में कि चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी जो है उन्होंने कहा है कि वेलफेयर जो है सेंटर्स जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे खोले जाएं और एक पब्लिक वेलफेयर जो होनी चाहिए गवर्नेंस का हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि 87.4 बिलियन हम स्पेंड करेंगे हेल्थ केयर पे, स्कूल एजुकेशन के ऊपर 120 बिलियन, हायर एजुकेशन एंड कॉलेजेस डिपार्टमेंट के ऊपर 29 बिलियन, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर 86.7 बिलियन, 66.8 बिलियन जो है डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए 26.9 बिलियन जो है वो खर्च किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है आपको मालूम ही है कि वो यूएस में आए हुए हैं, आज एक इवेंट जो है उसके अंदर ये आए हुए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का रोल है उसका बहुत ज्यादा उन्होंने तारीफ किया और उन्होंने कहा जी कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेशनल इकोनॉमी को और पाकिस्तान का जो ग्लोबल इमेज है उसको एनहांस कर रहे हैं अपने रेमिटेंसेस के जरिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम जानते हैं कि आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो बहुत ही नोटेबल है और हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू ISPR उन्होंने बहुत ज्यादा डीप अप्रिसिएशन शो किया ये जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तानीज एज पाकिस्तान के एम्बेसडर्स और जो है इसके अलावा जो पाकिस्तानी वहां पे आए हुए थे उस इवेंट के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी तारीफ की आर्म्ड फोर्सेज की, खासतौर पर जो ऑपरेशन बुनियान और मरसूस के बीच में जो ब्रेवरी और प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया उसकी उन्होंने लोगों ने बहुत तारीफ की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब उन्होंने आज अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि रिकोडिक का जो प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के अंदर उसको लिंक किया जाए पाकिस्तान रेलवेज नेटवर्क के साथ बाय 2028 ताकि फास्ट ट्रैक जो डेवलपमेंट है वो हो सके। आपको पता ही है कि रिकोडिक का जो मसला था काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चलता रहा है, तो अब वो कहते हैं हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। रिकोडिक का जो है ये प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट्स हैं जो कि अगर पूरी तरह से एक्सप्लोर किए जाएंगे तो 70 बिलियन US डॉलर्स का इससे फ्री कैश फ्लो और 90 बिलियन US डॉलर्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है क्रिएट किया जा सकता है। अमेरिकन माइनर बैरिक गोल्ड जो है वो इसमें ओन करती है 50% स्टेक, पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बलूच गवर्नमेंट जो है रेस्ट ऑफ द 50% इसको ओन करते हैं। तो इन्होंने कहा जी कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है और यहां पे पाकिस्तान रेलवेज के साथ जो है इसको कनेक्ट किया जाए। पाकिस्तान रेलवेज में भी बहुत सारी जो है डेवलपमेंट लेके आए गए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया ML1 और ML3 जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। सऊदी अरेबिया की जो मनारा मिनरल्स थी उसने जनवरी में कहा था कि वो 10-20% स्टेक इसके अंदर लेना चाहते हैं और वो जो है 500 मिलियन से 1 बिलियन US डॉलर्स के करीब जो है इसमें इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अप्रैल में जो इसके शेयर होल्डर्स थे उन्होंने फिर जो एक रिवाइज फिजिबिलिटी बनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 बिलियन डॉलर्स सिक्योर करना चाहते हैं। इसकी जो अर्ली प्रोडक्शन है वो 2028 तक जो है वो खत्म हो जाएगी और इसमें प्रोड्यूस करेंगे 200,000 टन्स ऑफ कॉपर पर ईयर और इसका वैल्यू जो है 5.5 बिलियन US डॉलर्स रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट फेज जो है 2029 तक और उसके बाद सेकेंड फेज शुरू होगी। हिंदुस्तान के अंदर जो है अब काफी आवाजें उठने लगी हैं बहुत सारी चीजों के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM जो है उन्होंने आज कहा है कि एक मीटिंग कर रहे थे वो श्रीनगर में और उन्होंने सेंटर को कहा है कि आपकी खामोशी हमें समझ नहीं आ रही है पैलेस्टाइन और ईरान के ऊपर। और उन्होंने आज ये जो मीटिंग है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी MY तारीगामी जो हैं उन्होंने कहा है जी कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और कंडेम करते हैं ये जो जीनोसाइड और वॉर क्राइम्स इसराइल गाजा के अंदर कर रहा है और जो कुछ अब इसने अटैक्स ईरान के ऊपर शुरू कर दिए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्होंने कहा जी कि इमीडिएटली इनको जो है इसराइल को बोलें कि ये अपने मिलिट्री अटैक्स जो है ये रोके और ये जो खास तौर पर अटैक्स सिविलियंस के ऊपर पैलेस्टाइन में कर रहा है और अब जो ईरान के ऊपर इसने लड़ाई शुरू कर दी है ये एक मेजर फ्लेयर अप जो है इलाके के अंदर हो सकता है और हमें समझ नहीं आ रही है कि जो इंडिया है वो इतना खामोश क्यों बैठा हुआ है। तरीगामी साहब ने कहा कि इसराइल की जो अग्रेशन है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए और यूएस और ईयू जो है वो तो कुछ भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये जो बारबेरिज्म ये जो कमिट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस और इरेनियंस के खिलाफ इसराइल के इसके ऊपर हमारा स्टैंस क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि हम तो आज तक जो है हमारा जो स्टैंस था वो यही था कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हुए थे, तो अगर आज उनके साथ हो रहा है खासतौर पर जो ईरान के साथ हो रहा है तो हिन्दुस्तान भी कोई दूर नहीं है, ये सब कुछ हिन्दुस्तान के साथ भी हो सकता है। इसी तरह आज जो है मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे कांग्रेस वाले भी और उन्होंने कहा कि मोदी जी ये जो थ्री नेशन टूर पे निकले हुए हैं तो इसमें बड़ी एनर्जी एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म जिसको थ्री ईज उन्होंने बोला है कांग्रेस ने कि वो बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन इसके अंदर इनको चौथा ई भी जो है वो यूज करना चाहिए विच इज एम्पथी यानी कि सिंपथी प्यार मोहब्बत जो है वो भी दिखाना चाहिए और ये उनको दिखाना चाहिए मणिपुर के लोगों के लिए जो कि बेतहाशा सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कांग्रेस ने कि मोदी जी अपने 35th ट्रिप पे बाहर चले गए हैं सिंस मई 2023 तो ये बहुत ही पथेटिक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जो मणिपुर के अंदर खराब हालात है उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी नहीं देख रहे। ये सारी बातें जो हैं आज कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश जो हैं उन्होंने आज एक्स के ऊपर कही। उन्होंने कहा जी कि पीएम साहब जो है साइप्रस कनाडा और क्रोशिया में जा रहे हैं और बड़ा अलजबरा की नॉलेज अपनी जो है लोगों को डिस्प्ले कर रहे हैं तो जरा अपने मुल्क में भी थोड़ा सा कुछ प्यार मोहब्बत दिखा ले और जो है वो पहले तो कह रहे थे कि जी मैं तो कनाडा के आगे झुकूंगा नहीं फिर उनका इन्वाइट भी मान लिया और वहां पर चले गए तो ये मोदी जी की जो है वीकनेस को एक्सपोज करते हैं। अच्छा इसके बाद कांग्रेस के दूसरे लीडर जो पवन खेरा हैं उन्होंने तो काफी मोदी जी की आज खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा जी कि ये सीज फायर पाकिस्तान के साथ कैसा हुआ हमको बताओ तो वो कहते हैं जी मोदी जी प्रेम चोपड़ा की रैलियां तो बहुत करते हैं और हम सबको ये प्रेम चोपड़ा की बातें पता है क्योंकि हम सब ने भी वो हिंदी फिल्में देखी हुई है तो लेकिन जब ट्रंप के सामने जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं और इन्होंने क्या डील बनाया ट्रंप साहब के साथ क्यों इन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया जो इन्होंने कहा था कि हमने टेररिस्ट आइडेंटिफाई किए हैं अप्रैल 22 पहलगाम अटैक में वो किधर है टेररिस्ट उनको क्यों नहीं पकड़ाया उनके साथ क्या हुआ है किधर है हाफिज सईद किधर है अजहर महमूद किधर है दाऊद इब्राहिम कहां है दूसरे टेररिस्ट। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब के सामने तो इनकी खिल्ली बोलती जो है वो बंद हो जाती है और दूसरों की ये खिली उड़ाते फिरते हैं इनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि ये ट्रंप साहब को जवाब दे सके लेकिन हम जब सवाल करते हैं तो हमें भी ये जवाब नहीं देते हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी भोपाल के अंदर थे और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब ने बस एक फोन उठाया और इनको एक फोन कॉल किया उन्होंने कहा मोदी जी तुम क्या कर रहे हो सरेंडर करो और मोदी जी जो है वो फौरन मान गए तो आज काफी जो है ये भड़की हुई थी ऑपोजिशन जो है हिंदुस्तान में भी खासतौर पे जो पवन खेरा ने कहा प्रेम चोपड़ा की रैलियां वो कहते हैं हमने देखी नहीं ये सारी बॉलीवुड की फिल्में। अच्छा जनाब जोनाथन बेली जो हैं वो आपको पता ही है काम कर रहे हैं जुरैसिक वर्ल्ड रीबर्थ में और उसकी आजकल प्रमोशंस जो हैं उसके अंदर बड़े नजर आ रहे हैं और एक फोटो कॉल था लंदन के अंदर जहां पे ये पूरी कैस्ट जो थी आई हुई थी तो बड़े जबरदस्त कपड़े वपड़े पहन के आए थे लेकिन लोगों ने क्या नोटिस किया उन्होंने देखा कि ये फ्लिप फ्लॉप्स में आए हुए हैं तो जो इनके फैंस हैं वो तो बड़े हो गए हैरान कहने लगे कि बिल्कुल ये किंग बिहेवियर है और दूसरे ने पूछा कि भाई क्या तुम जीन्स के नीचे या फ्लिप फ्लॉप का फैशन लेकर आ रहे हो और तीसरे ने कहा नहीं नहीं ये फ्लिप फ्लॉप तुम मत पहनना अगर तुम पहनोगे तो तुम वैसे नहीं लगोगे जैसा जोनाथन बेली लग रहा है सिर्फ वो रॉक कर सकता है और उसमें बड़ा स्टाइल है। अच्छा जी कल से आप शायद ये खबरें सुन रहे होंगे कि जो ड्रेक है वो बड़ा ही नाराज है जगमीत सिंह साहब से कि तुम जो है क्यों केंड्रिक लैमर के जो यहां पे कॉन्सर्ट हुआ था टोरंटो के रॉजर्स सेंटर में वहां पे गए थे उसके ऊपर बेचारे आज जो जगवीर सिंह साहब है उन्होंने सोशल मीडिया पे माफी मांगा है। केंड्रिक जेनर जो है वो आया हुआ है अपने शोज करने, विच इज पार्ट ऑफ ग्रैंड नेशनल टूर विद द SZA, तो इसको ड्रेक ने बड़ा एतराज किया क्योंकि लेमर ने जो इधर परफॉर्मेंस दी थी नॉट लाइक अस, ये जो बेसिकली ट्रैक है ये डिस करता है उसको ड्रेक को, लेकिन इस सॉन्ग के लिए उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और लोगों ने कहा एक बार फिर। तो इसके लिए अब ड्रेक जो है सू कर रहा है यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है लेमर को और SZA को, और उसमें वो कहता है जी कि उन्होंने रॉन्गली मुझे पोर्ट्रे किया है एज अ पेडोफाइल और उसकी वजह से मेरी सेफ्टी जो है अब एंडेंजर कर जाएगी। लेकिन फैंस ने कहा कि तुम जगमीत सिंह को क्यों अटैक कर रहे हो भाई, तुम कितने पैटी हो, दुनिया तो आज भड़क गई ड्रेक के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि खासतौर पर जिस वक्त जगमीत सिंह ने सॉरी इसको बोला और जगमीत सिंह ने कहा कि मैं केंड्रिक जेनर का वो लेमर का वो उधर वो अटेंड करने नहीं गया था, SZA का मैं जो है वो कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए गया था। OVO और ड्रेक जो है उन्होंने टोरंटो के जो रेपुटेशन है उसमें बहुत हिस्सा किया और फॉर मी एवरी डे एनी ऑलवेज इट इज ड्रेक ओवर केंड्रिक लेमर। लेकिन जनता तो भड़क गई, उसने कहा कि तुम खाम खा लोग तुम्हारी मर्जी से जाएं जिधर उनको जाना है, कॉन्सर्ट लेने के लिए या कपड़े लेने के लिए ये खाने अब तुमसे पूछेंगे ड्रेक साहब। तो जनता काफी जो है वो आज भड़की हुई। अगर आप आज का ट्रेंड देखेंगे ट्विटर के ऊपर तो आपको ये चीज काफी नजर आएगी, खास तौर पे ये चीज उस वक्त भड़क गई है जब मैंने जैसे कहा जगवीर सिंह साहब ने जब सॉरी बोला इसको। तो कल तक तो ये खबरें चल रही थी वो बड़ा भड़का हुआ है ड्रेक, उसको कह रहा है तुम क्यों गए थे, लेकिन आज जब सॉरी बोला तो चीजें खराब हो गई। देखती आंखों सुनते कानों,